शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की हल्की नारंगी रोशनी बची थी जो धीरे धीरे अंधेरे में घुल रही थी। पूरे दिन की भाग दौड़, ठोकरें और बेइज्जतियां सब जैसे शामली के कदमों में भारीपन बनकर उतर आई थीं। उसका दुपट्टा एक कंधे से फिसलता हुआ बार बार नीचे आ रहा था और वो बिना ध्यान दिए बस उसे ठीक करती जा रही थी। आंखों में थकान साफ दिख रही थी, लेकिन अंदर कहीं वो जिद अभी भी जल रही थी जो उसने मंदिर में ठानी थी। मैं हार नहीं मानूंगी। उसके कदम धीमे थे लेकिन रुक नहीं रहे थे। गली के मोड़ पर जैसे ही वो पहुंची, अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी भीड़ पर पड़ी। कुछ लोग इकट्ठा थे और बीच में एक एम्बुलेंस। उसका दिल एकदम से हल्का सा धड़का। ये यहाँ एम्बुलेंस क्यों? उसने कदम थोड़ा तेज किए। गली में अजीब सा शोर था, लोगों की फुसफुसाहट, किसी की हैरानी, किसी के अंदाजे। अरे सुबह तो ठीक ठाक गया था। हाँ घर पर ही था, फिर अचानक ये कैसे? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? शामली का दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वो करीब पहुंची, एम्बुलेंस का दरवाजा खुला। अंदर से दो वार्ड बॉय बाहर आए और उनके साथ सुधीर। शामली के कदम वहीं रुक गए। सुधीर की हालत देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, पैरों पर खरोचें साफ दिख रही थीं और माथे पर भी सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी जिस पर हल्का सा खून का निशान फैल गया था। उसकी आंखें वो पहले जैसी नहीं थीं। कुछ अजीब था उनमें, एक खालीपन, एक बिखराव। ये क्या हो गया? शामली के होठों से धीमे से निकला। भीड़ में खड़े लोग अब और पास आ गए थे। हर कोई बस देख रहा था और अपनी अपनी कहानी बना रहा था। तभी सुधीर का बड़ा भाई यानी मकान मालिक जल्दी से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अरे संभालो धीरे धीरे, उसने वार्ड बॉय से कहा। फिर उसने खुद आगे बढ़कर सुधीर का कंधा थामा। सुधीर, मेरे भाई, उसकी आवाज में घबराहट थी। तू जल्दी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, चल घर चल। लेकिन सुधीर ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो इधर उधर देखने लगा जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। उसकी नज़रें भीड़ में घूमती रहीं, फिर अचानक उसकी नज़र शामली पर जाकर रुक गई। कुछ सेकंड बस वो उसे देखता रहा और फिर एकदम से वो बच्चों की तरह घबराकर पीछे हट गया। नहीं नहीं, उसने धीरे धीरे सिर हिलाया जैसे किसी चीज से डर गया हो। सब लोग चौंक गए। अरे ये क्या कर रहा है? किसी ने फुसफुसाकर कहा। सुधीर अचानक झटके से शामली की तरफ बढ़ा और सीधा उसके पीछे आकर छिप गया, जैसे कोई छोटा बच्चा डरकर अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। शामली एकदम सन रह गई। ये क्या? उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। सुधीर उसके दुपट्टे को हल्के से पकड़कर खड़ा था, उसका चेहरा आधा छुपा हुआ और आंखों में साफ डर। वो आएगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन? शामली ने धीरे से पूछा। अब उसके अंदर भी एक अजीब सा डर घुसने लगा था। सुधीर ने जवाब नहीं दिया, बस और कसकर उसके पीछे छुप गया। मकान मालिक ये सब देखकर हैरान रह गया। अरे सुधीर, वो तेज आवाज में बोला, ये क्या कर रहा है तू? इधर आ, मेरे पास आ। लेकिन सुधीर ने सिर और जोर से हिला दिया। नहीं नहीं, उसने लगभग रोते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, वो फिर आएगा। भीड़ में खामोशी फैल गई। अब लोगों की फुसफुसाहट और तेज हो गई थी। इसको क्या हो गया? कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं लग गई? या फिर किसी ने कुछ कर दिया? शामली का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से सुधीर की तरफ देखा। सुधीर जी, आपको क्या हुआ है? उसने बहुत नरमी से पूछा। सुधीर ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसके पीछे से बाहर निकाला। उसकी आंखें डरी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। वो काले कपड़े में था, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। भीड़ एकदम चुप हो गई। काले कपड़े? मकान मालिक ने हैरानी से दोहराया। हाँ, सुधीर ने सिर हिलाया। वो मुझे देख रहा था, हंस रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने कहा, वो रुक गया जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो कि अगर मैंने कुछ बताया, उसकी आवाज और धीमी हो गई, तो वो सबको खत्म कर देगा। एक सहरन सी पूरे माहौल में दौड़ गई। शामली के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसके दिमाग में अचानक मंदिर वाला सीन घूम गया, विश्वनाथ का चेहरा, उसकी ठंडी आवाज। जब तक मैं चाहूंगा, तुम कहीं काम नहीं कर पाओगे। उसने झटके से सिर हिलाया। नहीं, ये क्या सोच रही हूं मैं? लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी सुधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे बचा लोगी ना? उसने बच्चे जैसी उम्मीद से पूछा। शामली कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके सामने एक टूटा हुआ इंसान खड़ा था जो उसे पकड़कर जैसे अपनी आखिरी उम्मीद बना रहा था। भीड़, मकान मालिक, सब देख रहे थे। मकान मालिक धीरे से बोला, श्यामली, इसे अंदर ले चलो, लगता है इसे बहुत डर लग रहा है। श्यामली ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसने हल्के से सुधीर का हाथ थामा। आइए अंदर चलते हैं। सुधीर ने बिना विरोध किए उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगा, जैसे उसे उसी पर भरोसा हो। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन हर किसी की नजरों में सवाल थे। घर के अंदर आते ही एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सुधीर अब भी श्यामली के पास ही खड़ा था, जैसे उससे एक कदम भी दूर नहीं होना चाहता। मकान मालिक ने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। ये सब क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। श्यामली ने सुधीर को बैठाया और उसके सामने पानी रखा। पानी पीजिए। सुधीर ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी थोड़ा गिर गया। श्यामली ने तुरंत गिलास संभाला। धीरे, उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन अंदर उसका मन तूफान बन चुका था। काले कपड़े वाला आदमी, धमकी, डर और दूसरी तरफ विश्वनाथ, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तफाक था या फिर कुछ और गहरा, कुछ और खतरनाक। श्यामली की नजरें धीरे धीरे दरवाजे की तरफ उठी, जैसे उसे अचानक फिर वही एहसास हुआ, कोई है जो ये सब देख रहा है और शायद ये सिर्फ शुरुआत है।